समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उबताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। अर्थात सच्चा कर्मवीर जीवन में आने वाली बाधाओं से घबराता नहीं है, वो भाग्य के भरोसे नहीं बैठता बल्कि दृढ़ संकल्प और परिश्रम से अपने भाग्य को बदल देता है। ये पंक्तियां हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय की। आज उनकी पुण्यतिथि भी है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो इसी के साथ ही आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की सुबह में आपके साथ मैं हूं आकर्षता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट नीना मैथ्यू। नीना, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षिता, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेरिन वी शेयर द लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज 16th of March। एंड नाउ वी बिगिन विद द हेडलाइंस।
निर्वाचन आयोग ने 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। असम, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु में एक ही चरण में चुनाव होंगे जबकि पश्चिम बंगाल में 2 चरण में चुनाव कराए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल नई दिल्ली में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि असम, केरल और पुदुचेरी में 9 अप्रैल को जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों के लिए और 29 अप्रैल को दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान होगा।
126 असम की 126 विधानसभा सीटों, केरल की 140 सीटों और पुदुचेरी के 30 सीटों पर एक चरण में 9 अप्रैल को मतदान होगा। तमिलनाडु की 234 सीटों पर एक ही चरण में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 152 सीटों पर 23 अप्रैल को और 142 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा।
निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि त्रुटिहीन मतदाता सूची किसी भी लोकतंत्र का सशक्त आधार है।
स्पेशल इंटेंसिव रिविजन
संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और कोई भी अपात्र मतदाता सूची में शामिल न हो। इस कार्य के सुचारू संचालन और सफल समापन में शामिल सभी चुनाव अधिकारियों को मैं बधाई देता हूँ।
कंडक्ट एंड कम्प्लीशन
अमिड राइजिंग टेंशन इन वेस्ट एशिया Following war between Israel, United States and Iran, Air India and Air India Express will operate 48 flights to and from region today. These include 10 flights between Indian cities and Jeddah and 12 flights to and from Muscat. In a press release, Air India said it will operate 1 return service each from Delhi and Mumbai, while Air India Express will operate 1 flight each from Bengaluru, Kozhikode and Mangalore. Air India Express will also operate 12 scheduled flights to and from Muscat and with 1 service each from Delhi, Kannur, Mumbai and Thiruvananthapuram and 2 services from Kochi. SpiceJet is also operating special flights from Fujairah in United Arab Emirates to India and also special flight from Dubai to Pune. Qatar Airways plans flights to Indian cities including New Delhi, Mumbai, Kochi to facilitate the travel of stranded Indian nationals. Gulf Air said some flights are operating through King Fahd International Airport in Dammam because airspace over Bahrain is closed. Airlines are advising passengers to check their flight status before going to the airport as schedules may change due to ongoing conflict situation.
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि उसके सदस्य देश वैश्विक संकट से निपटने के लिए अपने आपात भंडार से बड़ी मात्रा में तेल जारी करेंगे। एजेंसी ने एक वक्तव्य में कहा कि एशिया और ओशेनिया देश तत्काल तेल जारी करना शुरू करेंगे, जबकि यूरोप और अमरीका के आपात भंडार से आपूर्ति इस महीने के अंत तक शुरू होगी। एजेंसी ने कहा कि इस आपात उपाय से तेल की वैश्विक आपूर्ति बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने की घोषणा की है। ये मात्रा वर्ष 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद एजेंसी द्वारा जारी की गई मात्रा के दोगुने से भी ज्यादा है। एजेंसी की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि सदस्य देशों ने लगभग 41 करोड़ 20 लाख बैरल देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इसमें लगभग 72% क्रूड ऑयल होगा और शेष परिशोधित उत्पाद होगा। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष अगले कुछ सप्ताह में समाप्त हो जाने की आशा है। इसके बाद वैश्विक स्तर पर तेल की आपूर्ति बढ़ेगी और कीमतों में कमी आएगी।
The Gandhi Shilp Bazaar, showcasing diverse Indian tribal handicrafts, was inaugurated at the International Centre Goa in Dona Paula yesterday. The exhibition is being organised by the Assam Small Industries Development Corporation and sponsored by the Development Commissioner Handicrafts, Ministry of Textiles under the National Handicrafts Development Programme. Director of Handicrafts, Textiles and Choir of Goa, Sagun Velip, inaugurated the bazaar in the presence of Deeptansu Haldar, Saji Prabhakaran and Debashish Das. Speakers highlighted the cultural and economic value of traditional crafts and appreciated artisans who travelled from across India to participate. The exhibition features crafts such as Assamese Mekhala Chador, Banjara embroidery, Gond paintings, Monj craft and Bastar Dokra. The bazaar will remain open daily from 2 p.m. to 10 p.m. till 24th of March 26.
ओडिशा में कल मयूरभंज जिले में आए भीषण तूफान में दो लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। 200 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए। जिले के 12 गांव में कई पेड़ और बिजली के खंभे भी उखड़ गए। करंजिया ब्लॉक के किया और कंकड़ा गांव पर सबसे अधिक असर हुआ है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मौसम विभाग ने आज मयूरभंज जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। जिले में गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। उड़ीसा के सुंदरगढ़, क्योंझर, बालासोर और भद्रक जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है।
The 98th Academy Awards are currently underway at the Dolby Theatre in Los Angeles, bringing together some of the biggest names in the film industry to celebrate the year's best achievements in cinema. The ceremony is being hosted by comedian and television presenter Conan O'Brien, who is hosting the Oscars for the second consecutive year. Several prominent stars are presenting awards, including Priyanka Chopra, Robert Downey Jr., Chris Evans, Anne Hathaway and Gwyneth Paltrow. Security at the venue has been heightened amid rising tensions in West Asia. As the ceremony progresses, several early winners have already been announced. Amy Madigan won the award for Best Supporting Actress for her role in Weapons. The Oscar for Best Animated Feature went to K-pop Demon Hunters, while The Girl Who Cried Pearls won Best Animated Short Film. The film Frankenstein also secured multiple honors, winning both Best Costume Design and Best Makeup and Hairstyling.
आज सवेरे में अब प्रमुख महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरें और अब चेन्नई की खबरों के साथ है नीना।
बी बालन नागदेवी, a 1995 batch IPS officer and director general of police, has become the first woman intelligence chief of Tamil Nadu. She was DGP of the Economic Offences Wing CID prior to the new posting. She earlier headed the commando force in the state. During her tenure, she handled the All India Police Firing Competition in Omancheri. As elections have been announced, several rounds of talks on seat sharing between parties are taking place in Chennai. The model code of conduct is in force until the day of election on 23rd of April. The district electoral officers and other officials are engaged in performing their election-bound duties.
और आइए अब जानते हैं दिल्ली की खबरें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली में सुपर मेडिकल हब विकसित किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों का एकीकृत संस्थान बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में गुरु तेग बहादुर अस्पताल, दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को एकीकृत करने तथा उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की तर्ज पर एक स्वायत्त संस्था के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य राजधानी में उपलब्ध चिकित्सा संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए मरीजों को अधिक सुव्यवस्थित और उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। वहीं दिल्ली सरकार ने शहर में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए नई वितरण नीति जारी की है। ये नीति मौजूदा कमी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर सिलेंडरों के वितरण को सुनिश्चित करेगी। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार शहर में रोजाना होने वाली औसत बिक्री का लगभग 20% यानी करीब 1800 कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर प्रतिदिन नियंत्रित वितरण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली में तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा प्रतिदिन लगभग 9000 सिलेंडरों की बिक्री होगी। वहीं दिल्ली मेट्रो ने वर्ष 2025 में यात्रियों की संख्या के मामले में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। दिल्ली मेट्रो के अनुसार वर्ष 2025 में दिल्ली मेट्रो में कुल 235 करोड़ 80 लाख यात्रियों ने सफर किया। ये उपलब्धि दिल्ली मेट्रो को देश के शहरी जन परिवहन तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में और मजबूत बनाती है।
आकर्षिता, नाउ वी मूव ऑन टू बेंगलुरु। The Karnataka Department of Tourism has announced assistance for foreign tourists in the state facing travel disruptions on visa-related issues due to the ongoing war situation. In a statement, Tourism Minister H.K. Patil said the department is prepared to support international visitors during this period of uncertainty. Tourists can contact the helpline number 89706-50021 between 5:30 a.m. and 10 p.m. for assistance. They may also reach out to H.P. Janardhan, Joint Director, Department of Tourism, Government of Karnataka at +91 96 119 219 27 for further support. The Bengaluru Central City Corporation has collected a total fine of 78,50,000 rupees in 11,694 cases for violations related to banned single-use plastic and solid waste management rules. Commissioner Rajendra Cholan said 54,69,000 rupees was imposed in 7,047 cases involving the production, sale and use of banned single-use plastic, while 30,64,000 rupees was collected in 4,647 cases for violations of waste management rules since September 2025. He also appealed to the public and traders to avoid banned single-use plastic and to segregate waste before handing it over to door-to-door collection services to help maintain city cleanliness. The 158th meeting of the state-level Single Window Approval Committee has approved investments worth 4,824.31 crore rupees for 37 new industrial projects and two expansion proposals across 13 districts in Karnataka. The projects are expected to generate around 14,525 jobs. Announcing the approvals, Industries Minister M.B. Patil said the investment spans sectors such as IT infrastructure, sugar manufacturing, technical textiles, compressed biogas, aerospace, electronics, software, jewelry production and five-star hotel construction. Of the total approvals, 22 large and medium industries with investments about 50 crore rupees account for 3,908.68 crore rupees and are expected to create 12,475 jobs. Additionally, 15 projects with investments between 15 crore rupees and 50 crore rupees amounting to 350.60 crore rupees will generate 1,750 jobs. Two expansion projects worth 565.03 crore rupees are projected to create another 300 jobs.
और अब खबरें मुंबई से। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र में एलपीजी की कमी को रोकने के लिए एक विशेष निगरानी समिति के गठन का आदेश दिया है। इस समिति की अध्यक्षता नागरिक आपूर्ति निदेशक और राशनिंग नियंत्रक करेंगे। यह निर्णय पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को लेकर बड़ी चिंताओं के मद्देनजर लिया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने T20 मुंबई लीग के महिला संस्करण के शुरुआत की घोषणा की है। ये नया फ्रेंचाइजी आधारित टूर्नामेंट पुरुष लीग के साथ साथ चलेगा, जिसके 3 सीजन पूरे हो चुके हैं। लीग के मुख्य चेहरे पूर्व भारतीय पुरुष कप्तान रोहित शर्मा ने दोनों टूर्नामेंटों की ट्रॉफियों का अनावरण किया। पुरुष लीग में 8 टीम है, जबकि महिला संस्करण की शुरुआत 3 टीमों के साथ होगी। मैच इंडियन प्रीमियर लीग सीजन के बाद खेले जाने की उम्मीद है। तीनों टीमों का संचालन पीआरएस इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एलएलपी, रोडवे सॉल्यूशंस इंडिया इंफ्रा लिमिटेड और वर्ल्ड स्टार स्पोर्टिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। वहीं मुंबई विश्वविद्यालय परिसर के अंदर परिवहन के लिए बैटरी से चलने वाले वाहनों को शुरू करने की योजना बना रहा है। प्रवेश द्वारों पर लगभग 4 से 5 इलेक्ट्रिक वाहन तैनात की जा सकती हैं। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना के लिए संस्थान को 30 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है। ये कदम विद्यानगरी परिसर के अंदर बेस्ट बस रूट 318 पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद उठाया गया है। कलिना परिसर में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा चिंताओं के कारण बस सेवा रोक दी गई थी। प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन परिसर के भीतर परिवहन की सुविधा प्रदान करेंगे।
News from Hyderabad. The budget session of the Telangana legislature is set to begin today. A preparatory meeting was held yesterday at the assembly building to discuss the arrangements, accommodations and security measures to be done. Speaker Gaddam Prasad Kumar and Legislative Council Chairman Gatta Sukhendra Reddy chaired the meeting, which was attended by minister, senior officials and police officers. The speaker emphasized the importance of ensuring smooth conduct of the session, avoiding any untoward incidents and providing necessary support to ministers and members. He instructed police to take adequate measures for the security of the assembly and council premises. During the meeting, discussion was held on arrangements for the unveiling of Telangana Thalli statue by Chief Minister Revanth Reddy.
और अब खबरें कोलकाता से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर मतदान 2 चरणों में होगा। और आइए अब जानते हैं महानगरों के मौसम का हाल। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, वहीं आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुंबई में आज आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 33 डिग्री और अधिकतम तापमान 22 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं कोलकाता में आज तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। कोलकाता में आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहेगा।
Chennai is expected to have a partly cloudy sky. The minimum temperature will be around 24 degrees Celsius and maximum will be around 34 degrees. Bengaluru is expected to have a mainly clear sky. The minimum temperature is expected to be 20 degrees Celsius and maximum will be around 34 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between minimum of 22 degrees and a maximum of 35 degrees Celsius. National Vaccination Day is being observed in India throughout the country. The government of India observed 16th of March as National Vaccination Day to acknowledge and appreciate the hard work of frontline healthcare workers to ensure the vaccination of every child. India has made remarkable progress in scaling up routine immunization through intensified vaccination drives.
सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ाएं कदम, सुरक्षा का चक्र अपनाएं, हर टीके को समय पर लगाएं। जी हां, आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है और याद रखें कि एक छोटा सा टीका आपके बच्चे को गंभीर शर्त से लेकर उम्र भर की सुरक्षा देता है। आस्था ना बरतें, समय पर टीकाकरण करवाएं और स्वस्थ भारत की स्थापना करें।
In 1802, the United States Military Academy, the first military school in the United States, was founded by Congress for the purpose of educating and training young men in the theory and practice of military science.
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इतिहास में आज के दिन क्या-क्या खास हुआ और नीना बता रही हैं आपको कि आज के दिन और क्या खास हुआ.
In 1827, Freedom's Journal, the first African-American owned and run newspaper in the U.S., published its first issue in New York City. In 1850, American author Nathaniel Hawthorne's The Scarlet Letter was published.
और आज के दिन ही 1926 में वैज्ञानिक रॉबर्ट गोडार्ड ने दुनिया का पहला तरल ईंधन वाला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया.
In 1974, the grand old Opry radio show was broadcast for the first time from the new grand old Opry house in Nashville.
और आज के दिन ही 1966 में अमेरिका ने मानव युक्त अंतरिक्ष यान जेमिनी 8 लॉन्च किया और आज के दिन ही 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया में रूस के साथ जाने के लिए जनमत संग्रह हुआ था.
In 2012, Sachin Tendulkar scored his historic 100th international century against Bangladesh in an Asia Cup match at the Sher-e-Bangla National Stadium in Mirpur.
और आइए अब बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन. आज साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पुण्यतिथि है. 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में 1890 ईस्वी के आसपास अयोध्या सिंह उपाध्याय ने साहित्य सेवा के क्षेत्र में पदार्पण किया. हरिऔध को कवि रूप में सर्वाधिक प्रसिद्धि उनकी प्रबंध काव्य प्रिय प्रवास के कारण मिली. उनकी प्रिय प्रवास के बाद की कृतियों में चोखे चौपदे तथा वैदेही वनवास उल्लेखनीय है.
Tammy Terrell was an American singer-songwriter widely known as a star singer for Motown Records during the 1960s, notably for a series of duets with singer Marvin Gaye. With Gaye, Terrell scored 7 top 40 singles on the Billboard Hot 100, including Ain't No Mountain High Enough, which was inducted into the Grammy Hall of Fame in 1999, Ain't Nothing Like the Real Thing, and You're All I Need to Get By. Enjoy listening to this song by Tammy.
Like sweet morning dew, took one look at you, and it was plain to see you were my destiny.
With arms open wide, I threw away my pride. I sacrificed for you, dedicate my life to you. I'll go where you lead.
Come on, baby.
Always there in time of need.
Oh, yeah, when I lose the will, you'll be there to put me.
आज राजनीतिज्ञ विठ्ठल सखाराम पागे की पुण्यतिथि है. उन्होंने महाराष्ट्र विधान परिषद के 5वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया. विठ्ठल सखाराम पागे भारतीय रोजगार गारंटी योजना के प्रणेता के रूप में प्रसिद्ध हैं. सन 1972 में महाराष्ट्र को भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत हुई थी. उनकी प्रतिबद्धता के कारणों में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन शामिल है, जिसके लिए उन्हें जेल की सजा भी सुनाई गई थी. भारतीय डाक विभाग ने उनके योगदान को मान्यता देते हुए एक डाक टिकट भी जारी किया. और आज ही पुट्टी श्रीरा मुल्लू की जयंती है. मद्रास प्रदेश से पृथक आंध्र प्रदेश की स्थापना के लिए अनशन करके अपने प्राण त्याग देने वाले व्यक्ति थे. ये गांधी जी के पक्के अनुयायी थे. पोट्टी श्रीराम मुल्लू ने नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में जेल की सजाएं भी भोगी थी.
Jhené Aiko is an American R&B singer, songwriter, musician, and record producer. Aiko embarked on her musical career in 2002 as a backing vocalist and music video performer for the R&B group B2K. Aiko's studio albums Sold Out, Trip, and Shilombo were each met with critical and commercial success. Here's the song Pretty Bird from the album Sold Out.
Pretty bird, pretty bird, pretty bird, pretty bird. Please don't die. Please don't die. Pretty bird, pretty bird, I know you're hurting. Well, so am I. So am I.
आज हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक दया किशन सप्रू की जयंती है. अपने फिल्मी करियर में उन्हें सप्रू नाम से अधिक जाना गया. 1960 और 1970 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई थी, जिससे उन्हें काफी ख्याति मिली थी. खलनायक से पहले दया किशन जी ने कई चरित्र किरदार भी निभाए. उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया. चेतन आनंद की फिल्म कुदरत उनकी अंतिम फिल्म थी. सप्रू की पहली फिल्म राम शास्त्री में उन्होंने पेशवा का छोटा सा रोल किया. ये फिल्म अपने समय की हिट फिल्म थी. प्रभात की ही अगली फिल्म लाखा रानी में उन्हें बतौर हीरो लिया गया. उन्होंने जहां 1944 में आई फिल्म चांद में बेगम पारा के साथ काम किया, वहीं रोमियो जूलियट में नरगिस के हीरो बने. अदले जहांगीर, काला पानी, झांसी की रानी, तानसेन, गंगा मैया और वामना अवतार सहित कई फिल्मों में काम करते करते सप्रू पौराणिक विषयों पर बनने वाली फिल्मों के पसंदीदा कलाकार बन गए. 1951 में आई फिल्म शबिस्तान में सप्रू ने पहली बार खलनायक का किरदार निभाया और उस रोल में भी उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली. तो आइए सुनते हैं उनकी फिल्मों के ये गीत.
चलते चलते
और आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये डायलॉग.
सर जी, मैं आपसे माफी मांगने आया था, मैं वक्त पे नहीं पहुंच सका. मैं बकवास करती हूँ, 100 घंटे तुम मेरे साथ बैठे बैठे हीरे काटते. अभी 10 मिनट पहले मैं तुम्हें बाहर छोड़कर चला, क्योंकि तुमने कहा कि सेठ जी मैं सारा काम करूँ. क्या बात है, 8 घंटे से तो मैं यहाँ बैठा हूँ.
हाँ दादी,
तुम झूठ बोल रहे हो. 9 बजे में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे कि तुम वहां पहुंच गए. मैंने कहा विनय, यू आर वेरी पंक्चुअल. तुमने कहा सेठ जी, पहले दिन मैं कैसे देर से आ सकता था. के बाद हमने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया.
मैं नहीं था सेठ जी, मैं नहीं था.
तुम नहीं थे तो फिर कौन?
Brooke Elizabeth Burns is an American fashion model, game show host, actress, and television personality. However, Burns received recognition in 1998 when she joined the cast of the action drama series Baywatch alongside David Hasselhoff and Kelly Packard in her breakthrough role as Jesse Evans. Here's a dialogue from the series.
Jason, you can buy the whole state of Texas! Oh my God, do you guys want water? I think I need water. Okay, wait. Wait! We have to keep this a secret. But we are going to be rich. This is incredible. This is absolutely positively incredible.
Jerry Jeff Walker was an American country and folk singer, songwriter. He was a leading figure in the progressive country and outlaw country music movement. He is best known for writing the 1968 song Mr. Bojangles. Here's Jaded Lover by Jerry Jeff.
Yeah, well, it won't be but a week or two. You'll be out of love with someone new. Seems like it's happened 100 times before. And I can see you've been spreading yourself thin too. And it's the loneliest stage we've been going through.
Shri Kumar Thambi is an Indian lyricist, music director, director, producer and screenwriter in Malayalam cinema. He also writes poetry and has received the Vallathol Award. In 2017, he was awarded the J.C. Daniel Award, the Kerala government's highest honour for contributions to Malayalam cinema. Here's a song written by Shri Kumar Thambi, sung by K.J. Yesudas, Ishwaran Orikil.
ഈശ്വരനൊരിക്കൽ വിരുന്നിനു പോയി രാജകൊട്ടാരത്തിൽ വിളിക്കാതെ
और अब समय हो चला है श्रोताओं आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए आकर्षिता और नीना को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।